सपरमत विभावना पटुमतीक्षा सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या छत्तीस गुण समग्रे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुगे कुशले धम्माय सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नया तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अच्छुकम्मं जन्नं मरणं न पावीन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुभा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन नायकाः चारितारणौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाएं वंते आयरि भक्ति का उस गो को दसालोचन समनान समुदन से समुचर युतानम पंच विहाचारण आयरियानम आयरादि सुदनान उपदेशानम मुच्छायानम तीरण गुणपालन दयानम सब साव गुणम सयानिच कालम चिमि पूजिमि वंदामि नमन सामी दुखों को कम को वोइलाओ सुबे उन्नम समय उन्नम जिन्हुं संपत्ति को उच्छम श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य समंत भद्र स्वामी की आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की ये रत्नकरंडक शावकाचार आचार्य समंत भद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक बहुत सारी बातें सीखी और समझी हैं। सीखना और समझना तब सार्थक होता है जब हम उस सीखे और समझे हुए को जीवन में अनुभव में लाते हैं। बहुत सारी बातें अपने अनुभव में आती हैं लेकिन अनुभव से हम शिक्षा नहीं ले पाते हैं। और जिन चीज़ों की शिक्षा लेते हैं उनका हमें अनुभव प्राप्त नहीं होता। और यही एक मुझे लगता है मुख्य कारण है जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाने का। जो लोग सीखते हैं वे उस सीखे हुए को अनुभव में नहीं लाते और जिन्हें जिन बातों का अनुभव है वे उन बातों से शिक्षा ग्रहण नहीं करते। देखो बहुत सारी बातें अपने जीवन में अपन अनुभव में लेते हैं। कौन व्यक्ति होगा जिसको ये अनुभव ना हो कि क्रोध मान माया लोभ ये चारों कषायें मेरे जीवन में मुझे सिर्फ दुख ही देती हैं। सबका यह अनुभव है लेकिन अपने इस अनुभव से हम शिक्षा कहाँ लेते हैं। पाप हमारे जीवन को दुख पहुंचाता है इस जीवन में भी और आगामी जीवन में भी पाप हमारे जीवन को दुख पहुंचाएगा। ऐसा हम अनुभव भी करते हैं पर उसके कोई शिक्षा नहीं ले पाते। इन्हीं सब चीज़ों को कि कषाय कारण बनती हैं पाप उनका कारी है इस बात को हम दूसरे से सीखते हैं पर अपने अनुभव में लाने की कोशिश नहीं करते। दोनों चीज़ों के बीच हमारा सामंजस्य हमें जल्दी से कर लेना चाहिए। जिन बातों को हमने सीखा है उन्हें हम अनुभव में लाएं और जिन बातों का हमें अनुभव है उनसे शिक्षा लें। अपने बीते हुए अतीत में हुई गलतियों को अपनी अज्ञानता से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अरे देखो हमने ऐसी अज्ञानतावश कैसे कैसे संसार में दुख पाए हैं। कल कोई पूछ रहा था कि संसार में भटकने का कारण क्या है तो संसार में भटकने का कारण तो एक ही है हमारी अपनी अज्ञानता। किसी और ने हमें संसार में भटकने के लिए मजबूर किया हो ऐसा नहीं है। हमारी अपनी अज्ञानता की वजह से अज्ञानता कहो या मोह कहो और अज्ञानता या मोह है क्या चीज, तो वैसे तो हमें बहुत ज्ञान है सब बातों का, लेकिन कहते प्रयोजन भूत तत्व के बारे में जो हमारी अज्ञानता है, इसको आध्यात्मिक रूप से निरक्षर होना कहते हैं। व्यक्ति को अक्षर ज्ञान तो है, हस्ताक्षर कर लेता है अपने, सो निरक्षर नहीं है, लेकिन देखा जावे तो आध्यात्मिक रूप से हम लोग सब निरक्षर हैं। हमें अपने ही आत्मा का काखागा नहीं मालूम, अपने आत्मा के बारे में हमारी सुध नहीं है, यही तो अज्ञानता। हम शरीर की क्रियाओं को ही आत्मा की क्रिया मान लेते हैं और शरीर के सुख को ही आत्मा का सुख मान के बैठते, शरीर पे आने वाली विपत्ति को ही आत्मा पर आने वाली विपत्ति मानते। देह जीव को एक गिने बहिरात्म, ऐसी अपने आत्मा की बहिरात्म अवस्था है, वही वास्तव में हमारे दुख का कारण है। उसको दूर करने के लिए ही अपन सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में अपने जीवन को सबसे पहले समर्पित, पहले विश्वास आवश्यक है, श्रद्धा आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही विश्वास हो जाता है, हमें रुचि हुई, रुचि से श्रद्धा हुई, निश्चय होता है चीज का कि हाँ, और फिर जो हमने निश्चय निर्णय कर लिया है उसके अनुरूप हम अपना आचरण भी बनावें, ये भी आवश्यक है। हमने पिछले दिनों एक बात कही थी कि श्रद्धा होनी चाहिए, हमेशा कहते हैं, तो कई बार ऐसा लगता कि है तो हमारी श्रद्धा, लेकिन वो श्रद्धा फलीभूत क्यों नहीं होती है? वो श्रद्धा फलीभूत इसलिए नहीं होती क्योंकि हम अपने आप को भूल नहीं पाते। भगवान के सम्मुख पहुंच करके भी मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा हम, ये भाव हमारे अंदर बना रहता है। मैं तो दुकानदार हूं, मैं तो ऑफिसर हूं, मैं तो पिता हूं, या तो मैं अपने बच्चों की माँ हूं, ऐसा भाव भगवान की भक्ति के समय आ जाता है। और यही, या कि मैं मुनि हूं, दर्शन करते समय अगर ऐसा भी आ जाए कि मैं तो मुनि हूं, अरे जरा दूर से दर्शन करो, तुम सब, तुम सामान्य व्यक्ति हो, मैं मुनि हूं, ऐसा भाव भी हमारी श्रद्धा को कमजोर करता है। भगवान के सामने तो सिर्फ हम भक्त हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जब तक हमारा ये स्वामीपना, मैं का भाव जब तक नहीं टूटेगा, जब तक नहीं हटेगा, तब तक वो प्रार्थना और भक्ति सफल नहीं होगी। हमारी प्रार्थना और भक्ति सफल क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं का भाव बना रहता कि मैं ऐसा हूं, मैं भगवान के जैसा हूं, ऐसा वचन से तो कह रहे हैं, लेकिन मैं का जो भाव है वो नहीं जाता। मैं भगवान ही हूं, भगवान के सामने ऐसा कहने में अगर आ भी जाता है कि वंदे तद्गुण लब्धे, आपके जैसा होने के लिए आपकी वंदना कर रहा हूं, पर मैं अभी वर्तमान में कैसा हूं, ये भाव जाता नहीं है। और ये भाव जब तक नहीं जाएगा स्वामी पने का, कर्ता पने का और भोक्ता पने का भाव जब तक नहीं मिटता, तब तक श्रद्धा अभी ठीक ठीक फलीभूत नहीं होती है। मैं कल यही सुबह सुबह लिख रहा था तो उस समय मुझे मन में आया कि बात क्या है, तो लगा कि सचमुच यही है। जब तक हम अपने मैंपने को नहीं हटाएंगे, तब तक हमारे भीतर भगवान का दर्शन नहीं, मैंपना नहीं हटता नहीं। मैं हूं, मैंने ऐसा किया या मैं ऐसा करता हूं, ये जो चीज है वो हमें बार बार अटकाए रखती है। उसी से फिर अहंकार बढ़ता है, उसी से संकलेश होता है। और अगर कर्तापना छूट जावे, मैं क्या करता हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, अच्छा हो जाता है तो अपने को कर्ता मानने का मन हो जाता, बुरा हो जावे तो निमित्त मान लेते कि हम क्या करें, निमित्त हते हमने थोड़ी करो। तो जैसा हम बुरे कारी में अपने को निमित्त मान लेते हैं और बरी हो जाते हैं, ऐसे ही अच्छे हैं मानो ना, लेकिन दोनों के बीच अगर मानने लगेंगे तो समता परिणाम अपने आप आ जाएगा, तभी जा करके हमारी श्रद्धा। अब श्रद्धा को धीरे धीरे समझना है, अकेले सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में माथा झुका देने अकेले से श्रद्धा नहीं मालूम पड़ती, वह तो बहुत बाहरी है,
भीतर में हमारे कर्तृत्व भाव छूटा के नहीं, इसलिए और दूसरे जो दर्शन हैं उनमें तो कहते कि मैं नहीं करता हूं, भगवान आप ही करते, सुभगवान की जिम्मे सब छोड़ दो, अपन बरी हो गए, अच्छो है तो बुरा है तो दोनों चीजें हैं, लेकिन सब भगवान के ऊपर, भगवान को समर्पित कर दो। अर्थ उसका ये है कि अपने कर्तापने को छोड़ दो, और वो कर्तापना जिसका छूट जाए, गृहस्थ अवस्था में भी छूट जाता है, क्या मान के करना, कर्तृत्व बुद्धि से नहीं करना, कर्तव्य बुद्धि से करना। मैं पिता हूं तो मेरा कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दूं, हो गया काम। अब अच्छे संस्कार पाओ तो ठीक है, उन्हें पाओ तो ठीक, हमने अपना अपना कर्तव्य कर दिया। अब अगर हम कर्तृत्व मान के करेंगे उसी कार्य को तो बन जाएगा, तो अहंकार कर लेंगे कि देखा मैंने कैसे संस्कार डाले अपने बच्चों को, ऐसा अहंकार कर लेंगे। और अगर नहीं बनेगा तो अरे संकलेश में पड़ गए, हमने तो कितनी कोशिश की और ये बच्चे तो सब बिगड़ गए। उनके बिगड़ने और बनने से संकलेश और अहंकार कर लेते हैं, क्योंकि हम कर्तृत्व मानते हैं, कर्तव्य माने तो हमने तो अपना कर्तव्य किया, अब इसमें क्या संकलेश और इसमें क्या हर्ष और क्या विषाद। ऐसा उपाय है तो बहुत कहने में आसान, लेकिन भैया करने में बहुत कठिन है, ये भी हम जानते हैं, पर अपने को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि हाँ कुछ समय हमें कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ करके कर्तव्य भाव से जो भी कार्य है वो करें तो बड़ी जल्दी अनाशक्त हो सकता है व्यक्ति, बड़ी जल्दी उन सब चीजों के बीच होकर के भी और अपने जीवन का कल्याण, ऐसी दृष्टि की निर्मलता आनी चाहिए। ये तीन चार दिन से बहुत गड़बड़ करता, इधर धीमा हो जाता हूँ, इधर तेज हो जाती है, फिर मैं संभाल नहीं पाता हूँ, भाई थोड़ी सी व्यवस्था टाइट करना पड़ेगी, नहीं तो फिर आप अध्यक्ष को डांट पड़ेगी। ये जो है आपका सिस्टम गड़बड़ कर रहा है कंसंट्रेशन। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो कर्तृत्व स्वामित्व और भोक्तृत्व का भाव है वो जब तक नहीं जाएगा तब तक हमारी श्रद्धा फलीभूत नहीं होगी। हमें अपनी श्रद्धा को फलीभूत करना है तो इन चीजों को भी समझना होगा, और कर्तव्य बुद्धि तो रखें, कर्तृत्व बुद्धि स्वामित्व बुद्धि छोड़ दे। ठीक हो रहा है? वो थोड़ा चेंज करिए, इस तरह से अगर हम अपने परिणामों को निर्मल बनाने की प्रक्रिया में कर रहे हैं तो निर्मल कैसे होंगे, जब हमारा स्वामित्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व, रहने दो ये ठीक है, हमारा स्वामित्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व जो है वो जब हमारा हटेगा तब जाकर के परिणामों में निर्मलता आएगी, दृष्टि में भी निर्मलता तभी आती है। ऐसी दृष्टि की निर्मलता के साथ साथ जब हम राग द्वेष परिणामों को घटाने के लिए प्रयत्न करते हैं तो उसके लिए कहते कि बाह्य में आचरण स्वीकार करो, बाह्य में आचरण स्वीकार करो, पांच पापों का आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से त्याग करना पहले बाह्य में, क्यों, क्योंकि मेरा प्रयोजन अपने अंतरंग परिणामों की निर्मलता का है। ये हमेशा ध्यान में रहे, बाह्य आचरण करने वाले को ये ध्यान हमेशा बना रहे कि क्यों कर रहा हूं, मैं अहिंसा का पालन करता हूं उसका आशय क्या है, उसका आशय यह है कि मेरा राग द्वेष कम होना चाहिए। अच्छा, और बड़ा मजा है अपने साथ कि भोजन इत्यादि में तो कई लोग बहुत अधिक भोजन के क्षेत्र, आज क्या बात है, आज सबका चित्त जो है या तो मेरा ही चित्त ठीक नहीं या सबका इधर उधर ध्यान जा रहा, अपन एक बार सब चीजें भूल करके शांति से बैठ जाएं, भैया थोड़ा सा समय है। तो मैं भी क्या कह रहा था आपसे, बार बार भूल जाता हूँ, इधर उधर ध्यान चला जाता, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए दृष्टि की निर्मलता आवश्यक है, दृष्टि की निर्मलता के लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा आवश्यक है, और अपने परिणामों की निर्मलता के लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा पूर्वक उनके द्वारा बताया गया आचरण अनिवार्य है। सो आचरण तो पांच पापों के त्याग से आता है, वो वाही में भी किया जाता है और अंतरंग में ये बात ध्यान में रखी जाती है कि मेरे अंतरंग में परिणाम निर्मल हो रहे कि नहीं हो रहे। पिछले दिनों हमने इस बात को खूब गौर से समझा है कि अहिंसा अगर हमारे जीवन में आई है तो परिणामों में निर्मलता भी आनी चाहिए। मैं ये कह रहा था कि भोजन के मामले में तो अभी जैनियों में अहिंसा का पालन फिर भी है, भोजन के मामले में तो बहुत टाइट है मामला, कुछ जो वो भी पुराने लोग, नए लोगों का कोई भरोसा नहीं, भोजन का भी भरोसा नहीं। हाँ, पुराने लोगों में तो अभी बहुत इस बात का विवेक है, लेकिन उसके साथ साथ परिणामों की निर्मलता का भी ध्यान होना चाहिए। जितनी भोजन की पवित्रता हम रखते हैं, जितनी वस्त्रों की और जितनी शरीर की पवित्रता का हम ध्यान रखते हैं, अगर उसका 1% भी अपने परिणामों की निर्मलता का ध्यान रखें तो अपना काम इस बार तो हो जाएगा, इस जीवन में तो इतने में ही। और तीन ही चीजों का बहुत ध्यान रखता व्यक्ति, शरीर, जो व्यक्ति भोजन की पवित्रता का ध्यान नहीं रखता वो भी शरीर की और वस्त्रों की पवित्रता का तो ध्यान बहुत रखता। हाँ, भोजन की पवित्रता का ध्यान भले ही नहीं रखे, लेकिन शरीर की पवित्रता और वस्त्रों की बेझकाझक भाव चाहिए, एकदम लोहा करे कराए भाव चाहिए। अब भीतर भले ही गुड़ी परी हो, मन के भीतर, हाँ मन के भीतर की गुड़ी नहीं मिटाऊ, कपड़ों की गुड़ी तो मिट जाती। हाँ, गुड़ी कहाउत का कहा बुंदेलखंडी में सलवट कहते उसको आज की भाषा में, मगर वो अपने बुंदेलखंड को शब्द अच्छो है कि सब पूरी गुड़ी पर कहीं खराब हो गो इसको ठीक कर। ऐसा ही ये ध्यान आ जावे। मैं तो इन चीजों को इसलिए आपको याद दिलाता हूं कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको करते करते भी अगर ध्यान आ जाए, करे क्या कर रहे, कपड़ा धोते धोते इतने सारे धरे ढेर लगे कपड़ा धो रहे हैं, धोते धोते ख्याल आ जावे कि देखो जैसा इन वस्त्रों को धोता हूं ऐसा ही उपाय मुझे अपने आत्मा की मलिनता को धोने का, और कुछ नहीं। धो, सब रखे सो धोने हैं, कौन कौन के जिम्मे छोड़े, इतना ध्यान आ जावे। शरीर को स्नान करा रहे, घंटा भर स्नान कराते हैं, साफ सुथरा बनाते हैं, उस समय ध्यान आ जाए कि अरे शरीर की मलिनता तो मैं रोज दूर करता हूं, मेरे परिणामों की मलिनता पे मेरा ध्यान नहीं जाता। ऐसा अगर ध्यान आ जावे तो अपना काम हो गया। एक व्यक्ति की दुकान कपड़े की, अब कपड़े की दुकान में दिन भर काम करना, महाराज कोई उपाय बताओ कि धर्म का ध्यान बना रहे। हमने कहा अच्छा ऐसा करो, सफेद रंग अरंत भगवान का, लाल रंग सिद्ध भगवान का, पीला रंग आचारी भगवान, आचारी महाराज का, और उपाध्याय का नीला और साधु का काला रंग, क्योंकि दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल हैं जी भगवान के रंग, सो बेई रंग अपन लगा लो, और जब कोई मंगावे के सफेद कपड़ा ले आओ तो फौरन नमो अरहंतानम, ये सफेद रंग तो नमो अरहंतानम का है, और किसी ने लाल रंग मंगाया नमो सिद्धानम। भीतर भीतर ऐसा भाव आ जावे कि जैसे लाल रंग का कपड़ा दिखाई पड़ा सो कपड़ा तो पीछे छूट गया, पहले नमो अरहंत नमो सिद्धानम का ध्यान आ गया, नमो अरहंता। 24 घंटे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में धर्म को साथ में बनाए रख सकते हैं, यही सजगता आज आवश्यक है। आर ध्यान रौद्र ध्यान से भरे इस संसार में कैसे मैं धर्म ध्यान के लिए उपाय कर लूं, ये जिसको फिक्र हो गई उसका कल्याण तो हो गया समझ, और कुछ नहीं है। अगर हमें वही आचरण भी स्वीकार करना है तो इतना आसान, इससे आसान कोई तरीका नहीं है कि क्या करूं जिससे कि मेरा धर्म ध्यान। देखो, घंटे भर मंदिर में बैठ के धर्म ध्यान करना एक बिल्कुल जुदी चीज है, कर्मों की निर्जरा कर लेता है, एक श्रावक भी कर लेता ठाट बाट से पूजा करे, उसमें लिखा है कि ठाट बाट से पूजा करे पूरे आडंबर के साथ गा बजा करके खूब मजे से एक घंटे, खूब कर्मों की निर्जरा हो जाती। लेकिन बाहर निकले सो फिर उसके बाद 23 घंटे तो इतना अधिक कर्मों का बंध होता है कि वो एक घंटे को करो कराओ सबरो रात भर पीसो पारे में उठा लो। इसको ऐसा कह लो या कि कहते कि हाथी का स्नान है, हाथी ने स्नान किया सब नहा लिया और फिर बाद में धूल इतनी डाल ली तो कीचड़ और हो, ऐसा ही है। या कि मथानी का उदाहरण दिया श्रावक के लिए कि एक हाथ से खींचता सो उकलती चली जाती, मनोहित से जा लपटती चली जाती, फिर उकेलता फिर लपट जाती, फिर इस तरह से निरंतर कर्मों का आश्रय और बंध चलता है। उसके बीच में क्या करूं कि संवर और निर्जरा जो मेरे लिए उपादेय है वो मुझे हो, उसका उपाय है। संवर और निर्जरा का कोई उपाय है तो 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत है, मैं ये कहना चाहता। आश्रय और बंध आर्त रोद्र ध्यान से होता है तो संवर और निर्जरा धर्म ध्यान से होती, धर्म ध्यान के लिए व्यक्ति को व्रत नियम संयम अनिवार्य है। पूजा पाठ स्वाध्याय इत्यादि तो है ही, देव पूजा गुरु पास्त्री सास स्वाध्याय सो तीन ही कर ले, मनो अब घरे 24 घंटे संयम तप और त्याग, ये तो भूल ही गए अपन, 6 हैं पूरे, सो 3 तो अपने मंदिर में आन के हो जात, देव पूजा गुरु पास्त्री सास स्वाध्याय। अब जो 3 वापस घरे लौटे सो इनकी इनको न भूलो, संयम भी कुछ थोड़ा सा धारण करना, अनुशासन भी तपस्या भी करनी है घर में जा करके, और त्याग भी करना है मुझे, अपना सुख छोड़ना है दूसरे के सुख के लिए। यहाँ तो आदमी अपने सुख के लिए दूसरे पर दुख डालने की चेष्टा करता है और धर्म हमें सिखाता है कि दूसरे के सुख के लाने अपनो सुख छोड़ दो। ये है धार्मिक दृष्टिकोण, जी नहीं है धार्मिक दृष्टिकोण के अपने सुख के लाने चाहे जो करो दूसरे को चाहे जो हो जाए, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार व्रत नियम संयम हमारे जीवन में संवर और निर्जरा के लिए अनिवार्य है। पहला व्रत है अहिंसा व्रत, अपन ने समझ लिया, सत्य सत्य व्रत भी समझ लिया, अचोरी व्रत भी समझ लिया। चौथा व्रत आ गया है संयम, या उसको कहते ब्रह्मचरी व्रत। ब्रह्मचरी व्रत 2 प्रकार का है, एक अणुव्रत के रूप में है, एक महाव्रत के रूप में, और एक ब्रह्मचरी प्रतिमा भी है, हैं? अब तीनों में क्या फर्क है? तो समंत भद्र स्वामी ने तो ब्रह्मचरी अणुव्रत के लिए बहुत अच्छा नाम दिया, स्वदार संतोष नाम का व्रत। ब्रह्मचरी व्रत कहो या स्वदार संतोष कहो, और ब्रह्मचरी प्रतिमा क्या है? जिससे विवाह किया है उसके प्रति भी अब परिणामों में निर्मलता आ गई, ये ब्रह्मचरी व्रत प्रतिमा हो गई। और ब्रह्मचरी महाव्रत है तो कहते 9 कोटि विशुद्धि पूर्वक अपने 5 इंद्रियों के विषयों को त्याग कर देना, ये है ब्रह्मचरी महा। 5 इंद्रियों के विषयों को जिसने जीत लिया, क्या स्पर्श, क्या रसना, क्या घ्राण, क्या करण, क्या चक्षु, समस्त इंद्रियों के विषयों को जिसने जीत लिया है वो ब्रह्मचरी। 9 कोटि शुद्धि मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना के द्वारा, ये महाव्रत। अब अपन यहां समझेंगे कि ब्रह्मचरी अणुव्रत, देखो संबंध भी है और ब्रह्मचरी कह रहे, बताओ इस तरफ दृष्टि तो दे। ब्रह्मचरी अणुव्रत कह रहे हैं और एक से विवाह भी हो गया, फिर भी क्या दृष्टि रही है आचार्य भगवंतों की? दृष्टि ये रही कि हमारा असंयम इतना हो सकता था कि सबके प्रति हम अपना मन खराब कर सकते थे, लेकिन हमने अपने उस मन को रोक करके एक पर सीमित कर लिया है, इसलिए हमारा वो ब्रह्मचरी अणुव्रत। ये दृष्टिकोण यहां पर है। क्या कहते हैं? न तु परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भी तेर्यत ता परदार निवृत्ति संतोष नामापि। हाँ, न तु परदारान गच्छति न परान गमयति, ना तो पर के प्रति स्वयं आकृष्ट होता या गमन करता है, न दूसरे के लिए करवाता। क्यों? पाप भी तेरियत, क्योंकि उसमें वो पाप से भयभीत है। जिससे विवाह किया है उसके सिवाय
अन्य के प्रति न स्वयं आकृष्ट होता है न दूसरे को आकृष्ट कराता है, क्योंकि वो पाप से भयभीत है, उसकी कषाय इतनी नहीं है, अब मंद हो गई कषाय, इसलिए उसे मंद कषाय वाले को ही पाप पाप मालूम पड़ता। भैया तीव्र कषाय वाले को पाप पाप नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि कषाय तो कारण है, पाप उसका कारी है, जिसका कारण ही मिट गया उसको कारी क्या। तो कषाय की मंदता है जिसके उसको ये सब पाप मालूम पड़ता। कह रहे नहीं भाई, हमने जिससे विवाह किया है, जिससे हमने संबंध किया, श्रावक की दृष्टि से कह रहे, उसके प्रति ही हम, उसके अलावा अन्य के प्रति हम अपना भाव नहीं बिगड़ने देंगे, दूसरे को भी नहीं। सापरदार निवृत्ति, इस प्रकार पर का, पर स्त्री का त्याग और स्वदार संतोष नाम का यही अनुव्रत कहलाता है। अब इसमें देखो, बाह्य में तो ये दिखाई पड़ता है कि बाह्य में तो हमने जिससे विवाह किया उसी से संबंध है, अब अपने अंतरंग परिणामों भी में भी ऐसी ही निर्मलता आनी चाहिए, निरंतर इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए कहते कि बाह्य में भी हमें निमित्तों से बच करके रहना पड़े, अपने उपादान में तो योग्यता बढ़ानी ही है, लेकिन बाह्य में निमित्त से भी सावधान रहना पड़े, क्योंकि निमित्त मिलने पर हमारे अंदर असंयम के भाव आने में देर नहीं लगती है। ये बात जुदी है कि अपन ने अपने मन में जैसे संयम का इतना तो प्रभाव रहता है कि एक बार क्या हुआ, देखो वो घटना याद आ गई, बंडा में सनसी की बात है, जब आचार्य महाराज के साथ पूरे संघ के साथ विहार करके ठंड के दिन में पहुंचे, अब पहुंचे वहां पर जिस हॉल में, और सब पूरे संघ को रोका गया, तो उसमें क्या था कि दरवाजे के कांच टूटे हुए थे और खिड़कियों के भी कांच टूटे थे, ऊपर खप्पर थे। अब पहले तो समझ में नहीं आई, रुक गए, अब 10 बजे रात तक भैया वृत्ति वगैरह हो गई, तब भी ज्यादा ठंड का वो दबाव नहीं समझ में आया। जब सब चले गए और किवाड़ भी उनने जैसे बंद ने जैसे खुले, सब खिड़कियों तो, सब कोई उसमें कांच वहां सब टूटे हुए थे और ऊपर खप्पर। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ना शुरू हुई, ठंड बढ़ना शुरू हुई तो एक एक चटाई मिलती थी उस समय, जो है एक चटाई में उसी को चाहे बिछा लो चाहे ओढ़ लो चाहे जो करो आप, तो मिली सबके लिए एक एक चटाई थी। और पाटा तो मिलता नहीं था, पाटा तो आचार्य महाराज के लिए, अब इतने 15 को कहां से पाटा है। अब है ऐसी व्यवस्था जो है, सनस्सी की बात बता रहे आपको, उस समय तो ऐसे ही नीचे वो बिछा ली। अब बिछा करके जो है लेटे, लेटे तो वो तो दोनों तरफ से हवा तो आएगी, चिटाई ऐसी लेटे आधी बिछी आधी ओढ़े, नहीं समझ में आया कि कैसा करें। सो फिर एक उठा फिर दूसरा उठा, सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि कोई को नहीं समझ में आ रही, सो अपने उसी को ऐसा लपेट करके और बैठे बैठे जो है कि कम से कम नीचे से तो हवा बच गई, ऊपर से ही आ रही हवा, जितनी लपेटे चटाई बैठे रहे, आचार्य जी भी बैठे, सब बैठे हुए। सुबह सुबह भक्ति हुई, भक्ति के बाद आचार्य जी ने, अब आचार्य जी तो मजा तो लगाते हैं, वो बीच बीच में कहने लगे, क्यों रात में अच्छी नींद आई, अब क्या कहें, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब समझ रहे थे, तो बोले ठंड बहुत थी। हाँ ठंड तो बहुत थी, ये तो सबने कहा कि हाँ ठंड तो बहुत थी, तो क्या विचार आया, अब ऐसा पूछ लिया, तो क्या विचार आया, तो सही सही बताना। हमने, सब लोग चुप थे, हमने कहा महाराज विचार इतना ही आया था कि एक एक नीचे चिटाई बिछावे और मिल जाती तो ऊपर से एक अच्छे से ओढ़ लेते, इतना ही विचार आया, बस। बहुत बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि देखो यही है त्याग का महत्व, हमेशा ध्यान रखना। हम तो ये सोच रहे थे कि तुम्हें पूछूं कि क्या ध्यान आया, तुम्हें अभी गद्दा और पल्ली का ध्यान नहीं आया कि वो होती तो मैं ठंड बचा लेता, तुम्हें अगर लगा तो इतना ही लगा कि एक चिटाई और नीचे बिछावे की होती तो जाओ ऊपर वाली ऊपर ओढ़ने के काम, इससे जा, त्यागी हुई वस्तु का तो स्मरण भी नहीं आया है। ये है त्याग का महत्व, जिस चीज को अपन छोड़ देते हैं उस चीज का फिर मन में भाव भी नहीं आता है, आना भी नहीं चाहिए, साधना यही है, आ जाता है तो उस परिणाम को जल्दी से जल्दी हटा दो, आ भी गया है तो। ये है। इसलिए कहते कि जिस हमने एक से विवाह किया, बाकी सबका त्याग कर दिया, अब उनके प्रति अपने मन में कोई विकारी भाव नहीं लाना, यही तुम्हारा अंतरंग का ब्रह्मचरी है। और बाही में तो ब्रह्मचरी है कि भैया एक से संबंध रखें, तो बाही का तो आसानी से सद जाता है, लेकिन अंतरंग के परिणामों को भी ब्रह्मचरी के संभालना के किसी के प्रति भी दृष्टि हमारी खराब ना हो गए। दृष्टि की निर्मलता ही सबसे बड़ी चीज है, मैं तो इसी चीज को मानता हूं। पवित्र दृष्टि हो गए तो कहीं कोई बाधा नहीं है। आपने सुखदेव का उदाहरण नहीं सुना? ब्रह्मचरी वाले दिन तो हमने आपको बहुत बातें बताई थी, और उसमें और भी जितनी है सो है, तो सब उसी के लिए उदाहरण है बहुत सारे। सुखदेव का उदाहरण आता कि वे युवा थे उस समय 20 वर्ष के, और वो घर छोड़ करके गए, घर छोड़ के और नग्न निकल गए बाहर, वस्त्र ही नहीं पहने, और निकल गए नदी के किनारे से चले गए। वहां पर बहुत बहनें स्नान कर रही थीं, लेकिन किसी ने ना उनकी तरफ ध्यान दिया ना उनने उनकी तरफ ध्यान दिया, वो निकल गए नग्न ही। उसके बाद उनके पिताजी निकले 80 साल के, उनको खोज में निकले, ढूंढ रहे उनको। तो पीछे पीछे जैसे ही उस नदी के पास से निकले, सो सब बहनें जो स्नान कर रही थी उनने अपने अपने वस्त्र संभालना शुरू कर दिए। अरे वो दूर से ही देख रहे थे कि अभी अभी मेरा 20 वर्ष का युवा पुत्र निकला और वो तो वस्त्र नहीं धारण किए था, तब ये लोग सब आराम से स्नान करते रहे, मैं इतना 80 वर्ष का बुढ़ा हो गया कपड़े पहने हुए हूं, तब भी इनको जो है ऐसी लग रही है कपड़े संभाल रहे अपने। तो उन्होंने पूछ ही लिया कि देखो तुम लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं, मैं तो इतना वृद्ध हो गया 80 साल का, और फिर भी मेरे सामने तुम अपने वस्त्र संभाल रहे, और वो जो मेरा युवा बेटा निकल गया उसके सामने तुम्हें सुधी नहीं थी, उसको कोई मायने नहीं रखता था, उसकी दृष्टि में निर्मलता थी, तुम्हारी दृष्टि तुम संभाल लो, उसकी दृष्टि संभली थी तो हमें कपड़े संभालने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हारी दृष्टि संभली होती तो हमें भी आवश्यकता। तो मुझे इस चीज को सुन करके पढ़ करके लगता है कि सचमुच तो ऐसा ही है, दृष्टि हमारी निर्मल होवे तो इस संसार में कोई चीज हमें विकृत नहीं कर सकती, और दृष्टि बुरी होवे तो अच्छी चीज में से भी विकार हम निकाल दें, वीतरागता में से भी हम राग निकाल सकते हैं, और रागी के बीच रह करके भी उसमें से हम वीतरागता अगर हमारे भीतर अंतरंग में। मगर इसका अर्थ ये नहीं है भैया कि निमित्त अपनी तरफ से जुटाओ, नहीं, निमित्त मिल जावे तो परिणाम संभालो, निमित्त से तो हमेशा बसते भी रहो, ये भी लिखा हुआ है। इस तरह का ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, श्रावक अपने जीवन में आदर्श विवाह करके और अपने जीवन में ब्रह्मचरी व्रत का पालन कर सके, विवाह करके भी ब्रह्मचरी व्रत का पालन। देखो आप जिससे विवाह किया उसके अलावा अन्य के प्रति निर्मलता अगर आ गई तो वही तो ब्रह्मचरी व्रत है, और अलग से क्या लेने की आवश्यकता है इस व्रत को, मुझे बताओ कितना आसान है गृहस्थ के लिए, वो भी ब्रह्मचारी कहलाएगा। सोचो विवाह करने के बाद भी कह रहे हैं इस पे दृष्टि कभी नहीं जाती व्यक्ति की, आपने विवाह किया है इसके बाद भी आप अनुव्रती हो, ब्रह्मचर्य अनुव्रत है आपका, लेकिन बाह्य कोई दृष्टि विकृत ना हो ये भर हमें जरूर नियम लेना पड़ेगा अंतरंग में। इस तरह ये नाम दिया स्वदार संतोष नाम का व्रत है कि जिससे विवाह किया उसी से हम उसी में हम संतुष्ट हैं, ये संतोष परिणाम ही पापों से बचा देता है, असंतोष की वजह से व्यक्ति पाप करता है। और भी एक घटना है इसके बारे में, बुद्ध के जीवन की है, शायद उन्हीं के समय की है, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बहुत मन को संदेश तो देती हैं। दो भिक्षु थे, एक बड़ा भिक्षु था और एक युवा भिक्षु था, सो दोनों नदी के किनारे से चले जाते थे, अचानक उनने देखा कि कोई एक बहन नदी में डूब रही, उसने आवाज दी बचाओ। अब दोनों भिक्षु हैं क्या करें, तो जो युवा भिक्षु था वो फौरन कूदा और उसने उठा करके उस बहन को और किनारे पर रख दिया और चल पड़ा आगे। वो जो बड़ा भिक्षु था उसने कहा अरे अभी भी जाकर के कहता हूं मैं बुद्ध से कहूंगा कि इसने उसे स्पर्श कर लिया, अब मैं तब तो तुम्हें प्रायश्चित देना पड़ेगा, तुम तो तुम्हारा तो भिक्षुपना ही नष्ट हो गया, तुम तो भ्रष्ट हो गए। पूरे पूरे समय जब तक वो बुद्ध के पास नहीं पहुंच गया तब तक उसको टोंचता रहा, पूरे समय कहता रहा कि अरे तुमने तो बहुत पाप कर लिया, तुमने तो बहुत। और जाकर के बुद्ध के पास और कहा कि भगवान आज ऐसी ऐसी घटना रास्ते में हुई और इस भिक्षु ने जो है वहां उसे उठा करके बाहर निकाल करके रखा, इसने स्पर्श किया, इसका ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट हो गया, इसे प्रायश्चित दो। बुद्ध ने मुस्कुरा करके कहा कि प्रायश्चित तो पहले तुम्हें लेना चाहिए। उन्होंने कहा क्या मतलब, मैं तो इतना पवित्र। बोले सुनो, वो तो उसे उठा करके उस बहन को वहीं छोड़ के आ गया, तुम तो अभी तक अपने सिर पे उसको लेकर यहां तक आए, तुम्हारे मन में कलुषता तो अभी तक है, वो तो वहीं छोड़ के और यहां आ गया, उसने एक भी बार अपने मन को खराब नहीं किया, ना उधर किया ना अब किया, तुम पहले प्रायश्चित ले लो, उसको प्रायश्चित की आवश्यकता बाद में देखूंगा मैं। तो इस उदाहरण से हम क्या शिक्षा लें, इस उदाहरण से यही शिक्षा लें कि भाई हमारे परिणाम हमें संभालना चाहिए, बाह्य निमित्त मिलने के बाद भी अगर हमारे अंदर त्याग की भावना है तो हम अपने परिणामों को संभाल सकते हैं, त्यागी हुई चीज के प्रति फिर हमारा आकर्षण रह नहीं जाता है, ऐसी निर्मलता इस व्रत के लिए आनी चाहिए। और कहते कि कौन से दोष लग सकते, भाई निमित्त बाह्य मिले तो दोष लग सकते हैं, तो उन दोषों से बचना। अन्य विवाह करना नंग क्रीड़ा विटत तो विपुल त्रशाह, नंग क्रीड़ा विटत तो विपुल त्रशाह इत्वरिका गमनम चा स्मरस्य पंचवती चारा अन्य विवाह करना नंग क्रीड़ा विटत तो विपुल त्रशाह इत्वरिका गमनम चा स्मरस्य पंचवती चारा। हाँ, अन्य विवाह करना, अपनी घर गृहस्थी के अलावा अन्य लोगों के भी विवाह इत्यादि में अगुआ बन करके रुचि लेना। कहते अब तुमने ब्रह्मचर्य अनुव्रत ले लिया है, अब अपने घर गृहस्थी के तो बच्चों के विवाह इत्यादि तो ठीक हैं, लेकिन अन्य लोगों के और विवाह इत्यादि में इतनी रुचि क्यों ले रहे, शामिल होना अलग बात है लेकिन अगुआ हो करके और उस कार्य को करना, तो कहते इससे तुम्हारे व्रत में अतिचार लगे, इससे सावधानी रखना, बहुत अधिक इसमें रुचि नहीं लेना। और अनंग क्रीड़ा, तो ये तो अनंग क्रीड़ा कहलाती है, बहुत अधिक जो है आशक्त हो करके क्रीड़ा करना। विटत्व क्या कहलाता, विटत्व कहलाता है शरीर से अच्छी चेष्टा नहीं करना, बुरी चेष्टा करना, भद्दा जिसको अपन वल्गरिटी कहते, जिसको अपन असभ्यता कहते, अश्लीलता कहते हैं, तो ये विटत्व कहलाता। विपुल त्रशा, अब एक के प्रति भले ही अपन ने अपनी भावना को रखा है कामना, लेकिन उसके प्रति भी बहुत अधिक रखना, विपुल त्रशा, बहुत अधिक काम की इच्छा होना है, तो कहते ये भी जो है धीरे धीरे तुम्हारे व्रत को दूषित करेगी। और इत्वरिका गमनम, जिसका कोई स्वामी नहीं है, ऐसी अविवाहित जिसको अपन क्या कहती, वेश्या कहती, उसके उससे भी बच के देखो, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है उससे दूर रहो, नहीं तो अपना चरित्र भी धीरे धीरे मलिन होगा। आचार्य महाराज कहते कि भैया तुम शराब की दुकान पे बैठ के भी दूध पी हो तब भी तुम्हें लोग शराबी कहेंगे, सीधी बात है। इसलिए हमें सावधान करने के लिए कह रहे आचार्य महाराज कि अगर हमने अपने चरित्र को अब उज्जवल बनाना शुरू कर दिया है तो चरित्रवान के साथ में रहो, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है उसका उसकी संगति नहीं करो, उससे उसकी संगति करने से धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र में भी मलिनता आ सकती है। इस प्रकार ये पांच प्रकार के अतिचार भी इस व्रत के लिए बता दिए, और भी सत्वार सूत्र में जो एक कहा है विशेष रूप से, वो भी अपन ने पिछले दिनों पढ़ तो लिया था, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रता अनुस्मरण वृष्टेश रस स्व शरीर संस्कार त्यागा। कहते जिसको स्पर्श इंद्री जीतना है उसको पहले जा जीतना चाहिए जिब्भा। जिसकी जिब्भा इंद्री की लोलुपता नहीं गई वो स्पर्श इंद्री को नहीं जीत सकता, उसके ब्रह्मचरी टिक नहीं सकता। इस पे जिब्भा पर जिसका कंट्रोल है, ब्रश और इष्ट, कई कई व्यक्ति को मिर्ची इष्ट है, जाने समझियो का केले रसगुल्ला इष्ट होत है। हाँ, जो चीज इष्ट है वो आवश्यकता से अधिक खा लेंगे तो फिर अपनी ही इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रह जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जे भी शामिल किया उसमें कि ब्रशेष रस और स्वशरीर, अपने शरीर को ऐसा नहीं सजाना जिससे कि दूसरे को राग, क्योंकि देखो इतना तो सब लोग समझते हैं, अब इसमें और विशेष हम क्या कहें। व्यक्ति इस तरह की भी चेष्टा कर सकता है कि सामने वाले को राग उत्पन्न हो जाए, और व्यक्ति की चेष्टाएं ऐसी भी हो सकती कि सामने वाला विरक्त हो जावे। यही चीज इसमें कही गई है कि अपने शरीर, अपने मन और अपनी वाणी, विटत्व का मतलब यही है। विटत्व में मतलब ऐसे ऐसे वचन बोलना जिससे कि दूसरे की कामा शक्ति बढ़ जाए, शरीर से ऐसी चेष्टा करना, ये सब चीजें मन वचन काय तीनों को ही संभालने की इसमें व्रत में बात है। कठिन नहीं है, देखो हम ये पांचों व्रत पढ़ा रहे तो हमारी भावना तो ये है कि एक और रह गया परिग्रह परिमाण, भैया पांच अनुव्रत तो अपन को धारण करना ही चाहिए। अधिक से अधिक लोग जो है समझ लेवे, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, इतना तो अपन कर सकते हैं। बस इतना ही है कि अपने परिणामों को, अपनी दृष्टि को जीवन भर संभालना। व्रत तो लेने में देर नहीं लगेगी, लेकिन जीवन भर अपने परिणाम संभले रहवे तो जरूर से जो है पर अनुव्रत को पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत दुर्लभता से ये जपन को चीज मिली हुई है, ऐसा विचार करके बोले आचार्य गुरु और विद्या सागर मुनि।